तो श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और श्रीमद् भागवतम के इस सप्तम स्कंद में हम लोग जो हैं तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब हमारे पीछे बोलिए नमः अध्याय विजाये ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राण इंद्रिय मन बुद्धि विकारे व्यक्तिम ईयुषे। नमः अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयुषे। नमः अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयुषे। नमः अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकार व्यक्तिर्मीयुषे।
नमस्कार करता हूँ जो ज्ञान विशेष है
तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है। अतएव वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है। तात्पर्य, वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा से होता है कि परम पुरुष ही समस्त सृष्टि का आदि स्रोत है, जन्मादेस्य। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या ब्रह्मा जी परम पुरुष हैं? नहीं, परम पुरुष तो कृष्ण है। ब्रह्मा कृष्ण से ही अपना मन, बुद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं और तब वे गौण सृष्टा या इस ब्रह्मांड के शिल्पी बनते हैं। इस संबंध में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि संयोगवश विशाल पिंड के विस्फोट से उत्पन्न नहीं हुई। वैदिक जिज्ञासु ऐसे निरर्थक सिद्धांतों को नहीं मानते। प्रथम उत्पन्न जीव तो ब्रह्मा है, जिसे भगवान ने पूर्व ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान की, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो। यद्यपि ब्रह्मा प्रथम उत्पन्न प्राणी है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे अपने हृदय में भगवान की सहायता से बुद्धि प्राप्त करते हैं। सृष्टि के समय ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रहता, अतः वह भगवान से प्रत्यक्ष रूप में हृदय के माध्यम से अपनी बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में की जा चुकी है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी को विराट जगत का आदि कारण कहा गया है। यह भौतिक जगत में उनके पद का सूचक है। ऐसे अनेक नियंत्रक हैं जिन सबों को परमेश्वर विष्णु ने उत्पन्न किया है। इसका चित्रांकन चैतन्य चरितामृत में वर्णित एक घटना में हुआ है। जब इस ब्रह्मांड विशेष के ब्रह्मा को कृष्ण ने द्वारका में आमंत्रित किया, तो उन्होंने सोचा कि वे ही एकमात्र ब्रह्मा है। अतएव जब कृष्ण ने अपने नौकर से पूछा कि कौन से ब्रह्मा भेंट करने द्वार पर आए हैं, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उसने उत्तर दिया कि चारों कुमारों के पिता ब्रह्मा जी द्वार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा कि आपने यह क्यों पूछा था कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो भगवान ने बताया कि ऐसे लाखों ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी लाखों हैं। तब कृष्ण ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया, तो सारे ब्रह्मा तुरंत उनसे भेंट करने आ गए। चतुर्मुख ब्रह्मा ने चार मुख होने के कारण उन अनेक ब्रह्माओं के मध्य अपने को अत्यंत ही तुच्छ प्राणी समझा, जिनके अनेक मुख थे। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड का एक शिल्पी ब्रह्मा होता है और कृष्ण उन सबों के आदि स्रोत हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सारवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें हिरण्यकशिपु जो है अब भगवान ब्रह्मा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अध्याय का नाम है अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। और थोड़ा सा प्रसंग इस प्रकार है कि हिरण्यकशिपु के जो बड़े भाई हैं हिरण्याक्ष, उनका वध हो चुका है भगवान के हाथों, और उनकी पत्नी, उनकी माता, उनके बच्चे अब विलाप कर रहे हैं और हिरण्यकशिपु उनको सांत्वना दे रहे हैं और खूब जो है आत्मा का सांख्य ज्ञान उन्होंने दिया कि जो आया है उसे जाना है ना, शरीर से आसक्त होने का कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार ज्ञान देने के बाद उनको सांत्वना दी और अब स्वयं हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चले गए। और तपस्या कैसे की, दोनों हाथों को ऊपर किया और अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर लगभग 36,500 वर्ष हमारे हिसाब से इतना समय खड़े होकर क्या किया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और अब ब्रह्मा जी क्योंकि सामने प्रकट हो गए हैं, इतने समय तक तपस्या करने से उनका शरीर भी जो था बिना कुछ खाए पिए पूरी तरह से चींटियों के द्वारा खाने की वजह से पूरा शरीर जो है अब समाप्त हो चुका था, हड्डियों का ढांचा दिख रहा था, शरीर से अग्नि निकल रही थी। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने उनको क्या दिया, अब वरदान देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो है हिरण्यकशिपु प्रार्थना कर रहे हैं इन दो तीन श्लोकों में कि ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार कि जिससे ये इंगित होता है कि ब्रह्मा जी सब कुछ है। जैसे इससे पिछले जो श्लोक था उसमें भी, उन दो श्लोकों में भी इन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है संपूर्ण जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण इन तीन प्रकृति के गुणों के आधार हैं। तो अब जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनको, तो ये सब गुण वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के हैं, महाविष्णु के हैं, लेकिन वो क्योंकि ब्रह्मा जी से कुछ चाहिए उनको, तो अब हम ब्रह्मा जी का क्या कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं और उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखिए जो हम इस अध्याय का नाम है अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना, तो अगर ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करें तो जो हिरण्यकशिपु हैं इनका जो वास्तविक स्वरूप है या इनकी जो आइडेंटिटी है वो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल थे। ठीक है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया, है ना। तो जानकारी होनी चाहिए कि इसी भागवतम में वर्णन मिलता है कि चार कुमार जो कि ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, जब ये भगवान के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध से जब उनकी नासिका में प्रवेश करी, तो ये जो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी मतलब ये जो हैं ज्ञान मार्ग में थे और निराकार ब्रह्म की उपासना किया करते थे चारों कुमार, और अपने शरीर को भी इन्होंने अपनी योग शक्ति से बिल्कुल बच्चे का बना रखा था, मतलब 5 साल के छोटे छोटे बच्चे, और नग्न रहते थे। तो जब भगवान के चरणों से आई सुगंध को सूंघ कर ये वैकुंठ की ओर चले तो सारे द्वारों को पार कर गए। एक गेट से एंटर किया तो बड़ा सुंदर इन्होंने दृश्य देखा और वैकुंठ की जो सुंदरता थी वो इनको मुग्ध कर गई, मतलब ऐसी सुंदरता उन्होंने कभी देखी नहीं थी। 7 द्वारों से चलते चलते आखिरी द्वार में जय और विजय मिल गए और जय और विजय ने इन बालकों को देखकर रोक दिया, तो इनको गुस्सा चढ़ा कि भाई पहले 6 द्वार भी तो क्रॉस किए हैं, किसी ने आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा, किसी ने कोई पास नहीं पूछा, VIP कार्ड और ये सब, और हम लोग यहाँ तक आ गए, अभी बस अंदर जा ही रहे थे कि आपने रोक दिया। तो उनको लगा बुरा और उन्होंने कहा कि तुम जो है इस जगह पर रहने लायक नहीं हो, है ना, तुम्हें तो क्या होना चाहिए, असुर के रूप में पृथ्वी पर जाना चाहिए। इस बीच भगवान भी पहुंच गए 4 भुजाओं में और भगवान ने बीच बचाव किया कि इससे पहले ज्यादा शुरू हो, और भगवान ने फिर कहा ठीक है मैं इनके विवाह पर क्षमा चाहता हूँ। 4 कुमारों से भगवान ने माफी मांगी कि ये मेरे ही पार्षद हैं और इनको माफ कर दीजिए, ठीक है आपने श्राप दे दिया जाएंगे नीचे, नो प्रॉब्लम। और अपने भक्तों को जिनको उन्होंने कहा सर हम तो आपकी सेवा में लगे थे, आपके गेट पे खड़े हैं, इस अवस्था में इनको रोका है और बड़े श्राप मिल गया हमें, है ना, हमारी क्या गलती है कि नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो भगवान ने कहा ठीक है अगर आप नीचे जा भी रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद जो है आपको असर योनि में जाना तो पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं खुद स्वयं आपका उद्धार करने आऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, तो ये लोग नीचे आ गए। तो जब ये नीचे आए तो पहला अवतार इनका हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का ही था, जो दीदी के गर्भ में प्रकट हुए। और जब ये आए, जब पता चला दीदी को ये गर्भ में है, तो लगभग काफी वर्षों तक तो उन्होंने गर्भ के अंदर ही रखा उनको, क्योंकि मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चे आने वाले हैं मेरे, तो जो कि उत्पात मचाएंगे, जो कि असुर होंगे और पता नहीं क्या क्या, तो गर्भ में रखा। अब गर्भ के अंदर रहते ही पूरा का पूरा एनवायरमेंट ऐसा बदल गया पूरे समाज का कि मतलब अपशगुन, अपशगुन जिसे बोलते हैं, हमको तो ज्यादा नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग अपशगुन के रूप में ज्यादा कुत्ते को रोता हुआ देख लें कभी, है ना, ऐसी चीज देखते हैं। लेकिन जितने प्रकार के अपशगुन होते हैं ये वो सारे इस तरह थे, जब भगवान भी इस धराधाम से वापस अपने आध्यात्मिक जगत में गए तो उस समय जब अपशगुन हुए थे, जब युधिष्ठिर ने देखा हर जगह कुत्ते सियार रो रहे हैं, है ना, मतलब हर जगह जो है नक्षत्र जो है आपस में टकरा रहे हैं, उल्का पिंड हो रहा है, अंधकार छाया हुआ है, सूर्य ज्यादा हीट दे रहा है, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया अचानक, तब उनको लगा शायद भगवान श्री कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक जगत अपने धाम वापस जा चुके। तो इसी प्रकार अपशगुन यहां पर भी होने लगा। ऐसे जब दुर्योधन का प्रकट, मतलब उनको जब पैदा होना था, उस समय भी जो है ऐसे खतरनाक अपशगुन होने लगे, गधे रोने चिल्लाने लगे, है ना, और ऐसी हरकतें शुरू हो गई सियार। तो इससे पता चलता है कि कौन आने वाला है, क्या होने क्या वाला है। तो अब आपको कि प्रभु जी ऐसी तो हरकतें और ऐसे अपशगुन तो हमें रोज ही दिखते हैं तो इसका कारण ये भी है क्योंकि आसपास हर जगह जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वो हो सकता है कि इतने बड़े असुर ना हो या इतने बड़े संस्कारों के साथ ना पैदा किए जाने के कारण छोटे छोटे हों, तो इसलिए बहुत सारे कुत्ते ना रोकर कोई आस पड़ोस का एकत्र रो रहो। और आजकल गधे इधर नहीं है तो गधे कहीं दूर कहीं होते हैं तो उधर रो रहे हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये इस प्रकार के अपशगुन हम लोग इस एनवायरमेंट में देखते हैं, अधिक गर्मी, अधिक सूर्य का तापन और अधिक वर्षा मार पड़ती है और कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी बोलते 2012 क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो कुछ टकराने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये सारे अपशगुन जो है दिख रहे हैं लोग, क्योंकि छोटे 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 हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष आज समाज में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपको भी ऐसे क्यों बोल रहे प्रभु जी, हम तो ऐसे नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की मेंटालिटी हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु की थी, अगर हम उनके उन गुणों की या उन अवगुणों की चर्चा करेंगे तो पता चलेगा अरे आप तो ठीक कह रहे। कैसे? वैसे कि जो हमारे श्रीमान हिरण्यकशिपु हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी माता को सांत्वना देने के लिए अपनी भाभी को या जो उनके भाई की वाइफ थी, उनके बच्चों को कंसोल करने के लिए जो शब्द बोले, आत्मा का, शरीर का भेद, मटेरियल क्रिएशन का जो उन्होंने बताया, तो बिल्कुल सही ज्ञान दे रहे थे। और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने सांत्वना भी दी। तो हम क्या देखते हैं, हमारे भारत में भी सब लोग जानते हैं ज्ञान सबको है, क्या हम शरीर नहीं आत्मा है। और जब इसकी एप्लीकेशन की बारी आती है तो हम देखते हैं वो हमसे हो नहीं पाता। जैसे हिरण्यकश्यप ज्ञान देने के बाद अब इन्होंने क्या किया, अपने पे अप्लाई नहीं किया, वो दूसरे को कंसोलमेंट के लिए दिखा ली, लेकिन खुद दूसरे काम कर रहे हैं। जैसे एक बार हमने छोटी सी कथा बताई थी कि एक बार एक साधु जंगल से जा रहा होता है, एक गांव में देखता है एक व्यक्ति अपने बच्चे को गोद में रखे खूब रो रहा है क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। उसको खूब सांत्वना देता है, शरीर जो है नश्वर है, आत्मा क्या है अमर है। हिरण्यकश्यप भी ऐसे बोल रहा था, लेकिन उसको थोड़ा कंसोलमेंट दिया, उसको ठीक हुआ थोड़ा सा वो, तो उसने कहा धन्यवाद साधु जी के पैर वैर पड़े। कुछ समय के बाद ये दर्शन करने गया साधु जी के, तो देखा साधु जी की कुटिया से भी आवाज आ रही है रोने की, और अंदर जाकर देखो तो साधु जी रो रहे हैं। और साधु जी क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनके पैर पे बकरी है, उनकी बकरी मर गई थी इसलिए रो रहे हैं। वो कहते महाराज आपने तो मुझे ज्ञान दिया था, मेरा तो बेटा मरा था, तो आपने मुझे जो ज्ञान दिया था शरीर नहीं आत्मा है, तो उसने बोला देखो ऐसा है वो बेटा आपका था और ये बकरी मेरी है, मेरी प्यारी बकरी है। तो जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, वो ज्ञान अपने जीवन में ठीक प्रकार से उतार नहीं पाते। तो हिरण्यकश्यप को भी वो ज्ञान देने के बाद उसका हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गया, अभी वो खतरनाक तपस्या करने के लिए चला गया। अभी तपस्या क्यों की जा रही है, अपने भाई का बदला लेने के लिए, है ना, खतरनाक बदला। अभी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इतना लंबे समय तक, देखिए असुरों को भी क्या है जब तपस्या करनी होती है तो कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है, 36,500 वर्ष। किस लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं, अमर बनने के लिए, पूरा अध्याय देखिए ना अमर बनने के लिए प्रयास। और अभी भाई की मां तो क्या समझा गया है, शरीर जो है क्या है नश्वर है, आत्मा अमर है, और खुद किस लिए प्रैक्टिस कर रहा है, अमर बनने के लिए। तो इस प्रकार अब अमर बनने का उसका जो है अंदर भाव है, और इतनी स्ट्रांग तपस्या, आप सोच कर देखिए पांव के अंगूठे पे खड़ा होना है ना, और दोनों हाथों को ऊपर करना, और 36,500 वर्षों तक देवताओं के 100 वर्ष बताए गए, इतने लंबे समय तक तपस्या। और तपस्या करते हुए ऐसे नहीं कि खुजली कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ खा लिया, फिर थोड़ा लेट गए, थोड़ा टीवी चैनल देख लिया, स्कोर पूछ लिया, ऐसा नहीं। मतलब तपस्या का मतलब फिर इधर उधर कहीं नहीं, बस आंखें बंद हैं और पूरा एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। और फिर जब पूरा शरीर उनका चींटियों ने खा लिया, देखिए मांस नाम की चीज नहीं बची थी उनके शरीर में, हमारे ऊपर एक चींटी चढ़ जाए तो ढूंढते रहते हैं जब तक मार ना दे उसको, है ना। और वो तो चींटियों के पहाड़ बन गए थे, मतलब उनको चींटियों ने पूरी तरह खा लिया था, क्योंकि अब उनका पूरा मन पूरे एकाग्रता ब्रह्मा जी के उपासना में था, तो इसलिए वो शरीर से ऊपर उठ चुके थे। कितनी अच्छी तपस्या देखी। और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो पहला सेंटेंस ही ये था, क्या मुझे क्या कर दो, अमरत्व प्रदान कर दो। और ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि मेरी भी एक्सपायरी डेट है, जो चीज मेरे पास नहीं मैं आपको कैसे दे सकता हूं। तो ये बड़े तेज थे, देखो असुरों को बुद्धि और सब कुछ अच्छा होता है इनके पास, तो उन्होंने कहा ओके डायरेक्टली नहीं दे रहे, तो डायरेक्टली बोल देता हूं, कहते ठीक है ये नहीं दे सकते तो अब क्या करिए, कहते कुछ और मांग लो, तो कहते ठीक है ऐसा वर दीजिए कि ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना आसमान पे मरूं ना जमीन पे मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ट्रेन में मरूं ना फ्लाइट में मरूं। तो हर तरह के इंश्योरेंस करवा लिए उन्होंने अपने, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु ने क्या किया,
यस,
बेवकूफ बना दिया। अभी तपस्या के बाद ये भगवान का गुणगान कर रहे हैं, देव ब्रह्मा जी का। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, अल्प मेधसा मतलब कम बुद्धि वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये जब पूजा करते हैं तो अविधि पूर्वकम, विधि ठीक नहीं होती इनकी। ये क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर देवी या देवता के पास जाते हैं इच्छाओं के, भगवान कह रहे हैं कि हाँ होता है कि जब ये किसी देवता के पास जाते हैं पूजा इत्यादि करने के लिए, तो इनकी पूजा के आधार पर इनको फल जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन वो सब क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। भाई डेमी गॉड भी टेम्परेरी है ना, तो चीजें कैसी दे सकते हैं, टेम्परेरी। ब्रह्मा जी भी टेम्परेरी हैं, एज थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फल कैसे दे सकते हैं, टेम्परेरी। भगवान कृष्ण क्या है, शाश्वत हैं, परमानेंट हैं, तो फल कैसे देते हैं, परमानेंट। ब्रह्मा जी का लोक भी टेम्परेरी, देवताओं के लोक भी टेम्परेरी, लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत शाश्वत परमानेंट, उनके द्वारा की जाने वाली कृपा भी परमानेंट, उसका फल भी बहुत अच्छा। तो इधर जब अल्प मेध, जब कम बुद्धि वाले लोग हैं, अविधि पूर्वकम जब देवताओं की पूजा करते हैं, और इस भाव से कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो देवताओं के पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, और अगर कुछ देना भी है तो भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि ये देवता लोग मुझ ही से लेकर देते हैं। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु जो हैं ब्रह्मा जी की शरण में गया है और उनसे अमरत्व चाह रहा है। तो अब हम लोग हिरण्यकश्यपु की ये जो क्वालिटीज हैं इनको आज के व्यक्ति के साथ मिलाकर देखें तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं पर हमारे गुण भी इसी प्रकार के हैं। अगर हम पूछें कि कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं, हाथ नीचे रखें तो देखने लगे उल्टा हो गया, हाथ कोई खड़ा नहीं करना, तो कोई मरना नहीं चाहता वास्तव, कोई मरना बिल्कुल, क्योंकि मृत्यु की तो बात ही मत करो ना गुरु जी। आप कितना अपशगुन सा लेक्चर था, नहीं मृत्यु की बात कर रहे थे। घर में अगर कोई व्यक्ति चर्चा करने लग जाए मृत्यु की तो माता या पिता डांट देते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो, जीने की बात करो, बस लंबी आयु की बात करो, दूधो नाओ भूतो फूलो और कितने समय जियो, कब कब तक जीने की बात कर रहे हैं, हजारों साल जियो, ऐसे भी आशीर्वाद मिलते हैं। लेकिन नहीं हो सकता है, फायदा क्या ऐसा आशीर्वाद देना, हजारों साल कहां जीता है, हजारों साल का मतलब है कि हजारों बार आना, वो जो हजारों का आशीर्वाद मिला है उसको कैसे पूरा करेंगे, तो पार्ट में पूरा करना पड़ेगा ना, इधर शरीर छोड़ा फिर दूसरे शरीर में, फिर वहां शरीर फिर तीसरे शरीर में। तो इस प्रकार के अगर आशीर्वाद दिए जाते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं। अगर किसी को बोला तुम 100 वर्ष जियो तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर 100 वर्ष किसी किस्मत में लिखे तो जिएगा, और अगर आशीर्वाद की कृपा से 100 वर्ष जीना है तो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म में रत है, जिन पाप कर्मों की वजह से व्यक्ति को कहां जाना पड़ता है, नरक इत्यादि में जाना पड़ता है, और वहां यात्राएं भुगतनी पड़ती हैं, तो उसके लिए जो 100 साल है वो क्या है, ये आशीर्वाद है या श्राप है, हाँ जी श्राप जैसे ही हो गया ना उसके लिए। लेकिन अगर कहीं वो व्यक्ति भक्तों के संग में आ जाए, भगवान की शरण में आ जाए, तो फिर क्या ये श्राप किसमें बदल जाएगा, वरदान में बदल जाएगा, तब ऐसे वरदानों का फायदा है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मरूं ना, कोई भी मरना नहीं चाहता, और मृत्यु का लक्षण है कि इसको आना ही आना है, और दूसरा लक्षण है कि कभी भी आ सकती है, इसे फाइनल एग्जाम भी बोलते हैं केवल, मतलब कि होना ही होना, हर एक को इसको एग्जाम को देना ही देना है, और कोई इसका डेट शीट भी नहीं कि कब होगा। तो हम लोग भी मृत्यु से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? अभी अपने पास तो इतना टाइम नहीं है कि किसी को पास जाकर खूब बोले जी मुझे बचा लो। हम ज्यादा अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हाथ दिखाने वाले के पास जा सकते हैं, कोई विभूति पकड़ा दे, कुछ ये पकड़ा दे, बचा लो मुझे, कुछ कर लो मेरा ये। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं जिंदा रहने का, सदैव बचने का। अब छोटे से बच्चे को भी अगर आप थोड़ा सा नीचे बरामदे से नीचे ऐसे पकड़ के यूं करोगे तो वो एकदम टांगे ऐसे ऐसे कर लेगा, क्यों? वो भी नहीं चाहता उसको भी पता है मैं भी होकर आया हूं कहीं से। तो ये हर एक के अंदर है। आप एक छोटी सी चींटी को फूंक मारिए, उसको जब पता चलेगा ना कोई फूंक मार रहा है तो वो भी उड़ के मरना नहीं चाहती। वो क्या करेगी, वो जमीन को इस प्रकार पकड़ लेगी, आपकी फूंक खत्म हो जाएगी लेकिन वो उड़ेगी नहीं। उसको भी अपने प्राण प्यारे। एक चिड़िया जब दाना चुगने आती है कितनी डरी हुई होती है, वो एक दाना चुगने में पहले 5 बार इधर देखेगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कोई है तो नहीं, फिर चुगी, फिर देखिए अब कोई आया तो नहीं, अब कोई आया तो नहीं, आपको मारेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं, फिर दाना चुग। इस प्रकार डर की, हर व्यक्ति को डर का भय है मृत्यु का, और इस प्रकार इससे डरते डरते ही व्यक्ति प्राण त्याग देता है। और बताया जाता है मृत्यु के समय 42,000 बिच्छू, कितने 42,000 बिच्छू क्या हुआ, ये साथ में नहीं चलते शमशान तक छोड़ने के लिए, ऐसा नहीं बताया गया। इतने बिच्छू अगर डंक मारे हैं, काट खाएं किसी को, तो जितना दर्द होता है ऐसी अवस्था में उतना दर्द होता है मृत्यु के समय। तो मृत्यु अवश्य भावी है, जिन लोगों को पता नहीं है, नहीं सबको पता है, सॉरी सबको पता है, हिरण्यकशिपु को भी पता था फिर भी वो अमर बनना चाह रहा, उसी तरह हमारे अंदर भी इस प्रकार का भाव रहता है कि हम भी अमर रहें, हमें भी कोई मारे ना, हम भी बचे रहें। इसलिए हम लोग जितने भी तरीके अपनाते हैं अमर रहने के या शरीर को ठीक रखने के, उसका पीछे भाव ये रहता है कि मैं जल्दी मरूं ना, मैं सब ठीक रहे। और दूसरी बात तपस्या, नहीं फिर ज्ञान का ठीक प्रकार से जीवन में ना उतारना है ना। ज्ञान सबको है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है ना, भौतिक प्रकृति एक दिन इसका नाश होना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करते। जब जब हमारे पर दुख या कष्ट आते हैं, जब जब हम लोग उसी परेशानी में होते हैं, तो क्या उस समय हम लोग इस प्रकार के ज्ञान को अप्लाई कर पाते हैं कि ओहो ये दुख आया है या जो कष्ट आया है या जो दूसरा व्यक्ति मुझे अननेसेसरली कष्ट दे रहा है, तो क्या उन कष्टों से मैं दुखी नहीं होता? होता हूं कि जब कोई मेरा अपना व्यक्ति मुझसे जुदा होता है तो मुझे कष्ट नहीं होता? होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ज्ञान को अप्लाई नहीं करते। हिरण्यकशिपु ने भी नहीं किया, हम भी नहीं करते। फिर तपस्या करते हैं, किस लिए तपस्या करते हैं? ताकि हम लोगों के पास ऐसी शक्तियां आ जाएं या इतने शक्तिमान हो जाएं ताकि हम लोग मरे ना। तो हम तपस्या किस रूप में करते हैं? हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की अमर होने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, और एक पैर के मुट्ठे पे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करके। हमारी तपस्या दूसरे तरह की, हम लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लंबी दूरी को तय कर नौकरी पर जाना पड़ता है, टारगेट्स प्रोजेक्ट्स पूरे करने पड़ते हैं, ऑफिस की सारी पॉलिटिक्स में अंदर फंसना पड़ता है, ईर्ष्या द्वेष रखना पड़ता है, और बॉस की डांट खानी पड़ती है, और फिर इतना ही नहीं अभी तो टू बी कॉन्टिन्यूड होता है, ऑफिस से घर भी तो आना है तो फिर जो है जो 2-3-4 आसपास हैं वो सब जो हैं क्या करते हैं, डेंगू के मच्छर की तरह उसके प्लेटलेट्स कम करते रहते हैं है कि नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि पुरुष की बात कर रहे हैं, इसमें माताओं के लिए भी वो जो आदि भौतिक कलश देने वाला व्यक्ति है वो क्या है, डेंगू मच्छर के समान। तो इस प्रकार बच्चे हों चाहे पत्नी हो चाहे पति हो चाहे माता पिता हो चाहे आस पड़ोस के लोग हों, और जब आप घर पर आए एंटर करने से पहले देखा आपकी पार्किंग में किसी और की गाड़ी खड़ी है। पहले कोई बोलता था कि विश्व प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ, फिर बताते हैं कि पानी पे पानी के लिए भी चक्कर में युद्ध होगा, अभी पार्किंग के लिए युद्ध होते हैं कि कोई बता रहा था कि एक पढ़ा था हमने कि जब एडवर्टीजमेंट देखता है व्यक्ति गाड़ी की तो उसमें दिखाते हैं 30 सेकंड के उस एड में फर्राटेदार गाड़ी चलती है शाइन करते हुए, देखा तुमने, और व्यक्ति के हृदय में इच्छा जागृत हो जाती है ऐसी गाड़ी, ऐसी कंफर्टेबल, ऐसे बैठेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे बिना किसी रेड लाइट के। अच्छा, तो जब वो गाड़ी खरीदता है, गाड़ी शोरूम से लेकर बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते पहले तो बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत आती है उसको, फिर रेड लाइट पे आते जाम है ना, और फिर कहीं लग गए तो सुबह सुबह मूड खराब है ना, मतलब सुबह या शाम जब भी उसने खरीदी, और फिर उसको लगता है बस घर पहुंचूंगा तो सब लोग आरती की थाली लेके खड़े होंगे मेरे लिए, आस पड़ोस के लोग पूरी कॉलोनी के लोग सबने गाड़ियां बाहर पार्क कर रखी हैं, आइए आप पार्क कीजिए इधर। वो बेचारा आधे घंटे तक घर के बाहर ही घूमता रहता, कहां लगाऊं किधर जाऊं किधर लगाऊं, इतना बड़ा दुख लेकर आ गया अपने लिए वो। ये थोड़ी दिखाते हैं जब गाड़ी का एड होता है, अगर ये दिखाने लग जाए कि आपको गाड़ी खरीदते कितनी समस्या आएंगी, कि हर कुछ देरी के बाद आप देखोगे कि आज फिर पेट्रोल के रेट बढ़ गए, फिर डीजल के रेट बढ़ेंगे इतनी इतनी दूरी पे, आपको बाप रे बाप रोज बढ़ेंगे तो हाँ, फिर आपको लगेगा अरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ठोकर मारेगा गाड़ी में, तो रास्ते में झगड़ा करता हुआ दिखाना चाहिए एड में। तीसरा, रेड लाइट में रहेंगी आप जो है 30 से 40 की स्पीड पे पहुंचते फिर ब्रेक लगानी पड़ेगी, उसमें लिखा है 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 20, 100, 10, 100, 20, 100, 30, 80, 40, वो कभी जा ही नहीं पाओगे वहां तक और उसके बाद पार्किंग के झंझट, और फिर बच्चों ने पड़ोस में खेलते हुए शीशा तोड़ दिया, किसी ने स्क्रैच मार दिया, किसी ने लिख दिया प्रभु जी आई लव यू, वो गाड़ी पे नहीं लिखा वो यहां लिखा गया, वो हो सकता है शरीर पर उसने टैटू बनवाए वो मिट जाए, लेकिन गाड़ी का वो स्कार कभी नहीं मिटेगा उसका, वो गाएगा। तो अगर ये सब दिखाएंगे तो कोई गाड़ी नहीं खरीदेगी, घंटों घंटों सड़कों में खड़े लोग जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपना, जाम में खड़े हुए, एक एक आदमी बैठा गाड़ी में, क्यों घर से बाहर निकलते अच्छा लगता है कि हाँ मैं जा रहा हूं गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस कहां जा रहे हो आप तो रेड लाइट पे खड़े हो, ऑफिस कहां जा रहे हो आप तो जाम में खड़े हो, बस एक सुख है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, वो स्कूटर पे बैठा है, वो बस में बैठा है, आप गाड़ी में बैठे। तो ये दुख और ये कलेश ये कष्ट थोड़ी दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट ने, अगर ये दिखा दिए तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इस प्रकार हर व्यक्ति जो है ऐसा ऐसी वातावरण चाहता है, ऐसी शक्ति चाहता है, इतनी तपस्या करता है, किस लिए, स्वयं भोक्ता बनने के लिए, इंजॉय करने के लिए। और इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी शक्ति चाहता है, तपस्या कर रहा है, तो ये तपस्या नहीं लग रही आपको, सुबह से उठकर शाम तक कितने कलह कलेश में। हिरण्यकश्यप तो बेचारा जंगल में गया, ठीक है एक जगह पे पैर पे खड़ा होकर चलो जी आपको के बड़ा शांत था, जिसमें कुछ आस पास स्थान ही कर लिया उन्होंने, अच्छा स्टैमिना था, अच्छी उम्र थी, लंबी चौड़ी, अपना 60-70 साल का जीवन है कि नहीं, और उसमें जो है हमारी जो तपस्या वो क्या है, इन्हीं सब झंझटों के बीच में रहते हुए उसको अचीव करना, जिसको जो तपस्या कर हिरण्यकश्यप ने अचीव किया, हम क्या अचीव करते हैं, पैसा मनी, हमारी तपस्या का फल क्या है, पैसा, क्योंकि उस पैसे से ही हम अमर हो सकेंगे, हमें लगता है ऐसा, उस पैसे से ही हम वो गाड़ी खरीद सकेंगे जिससे हम लोग दुखी रहे, इसी पैसे से हम लोग वो सब झंझट खरीद सकेंगे, या उसको बचाना उठाना संभालना, इस तरह की चिंताओं में लगे रहेंगे, तो इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप को भी शक्तियां मिल गई तो उसने भी जो है हाहाकार मचा दिया, और तब संकट हुआ उसको जब उसको लगा कि मेरे घर में ही एक ऐसी संतान आ गई है जो विष्णु का भक्त है। वो याद नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी विष्णु को, बोलता था खबरदार तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो वो तो मेरे से डर कर सबके हृदय में छुपा बैठा है, वो निकले बाहर आके लड़े मेरे से, डर को कहीं का खूब बोलता था। उसको मालूम है कि आए सामने पूरा ऐसा उसके अंदर था। तो कई बार जिसके पास धन घमंड ये सब ज्यादा बढ़ जाता है ना, वो कहता है भगवान नहीं हूं जी, देखता हूं कौन मेरे से कर सकता है। कुछ समय पहले या अभी भी हमारे देश के जो अधिकारी जन है, नेता जन है, कुछ है, उनको लगता था मेरे पास पोस्ट आ जाए बस एक बार मैं देख लूंगा सबको। कई लोग हमें बताते हैं कि आज नेता ये करते पकड़ा गया, आज वो नेता इस चक्कर फंस गया। कारण क्या है कि मीडिया थोड़ा तेज हो गया, तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो लीडर बनते हैं, भगवान बनते हैं, सब के सब जा रहे हैं अंदर। वो समय गया। तो कहने का क्या मतलब, हम भी सुबह से लेकर शाम तक तपस्या कर रहे हैं उन शक्तियों को अर्जित करने के लिए, ताकि हम भी अमर हो सकें या हम भी हिरण्यकश्यप की तरह एंजॉय कर सकें। और फिर सिद्धांत ठीक से ना जानने के कारण हम लोग भी किसी की भक्ति में या कहीं भी अपनी श्रद्धा को इन्वेस्ट कर देते हैं। जहां पर ज्यादा भीड़ है, जहां पर इच्छाएं जल्दी पूरा होती हैं, जहां पर कुछ ज्यादा नियम नहीं है, उसी की जय जयकार करते हैं, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा अविधि पूर्वकम, अल्प मेधसा भी है, बुद्धि भी कम है इनकी, और विधि भी ढंग से नहीं करते। इनको पता ही नहीं मैं कौन हूं और ये सब कौन है देवता लोग। यहां पर हिरण्यकश्यप को भी भगवान बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं तमोगुण रजोगुण सबके आधार हो आप। अरे कैसे हैं आधार, ये सारी की सारी सृष्टि तो भगवान के द्वारा की गई है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये तीनों के तीनों जो हैं भगवान के द्वारा निर्मित इस भौतिक जगत के लिए प्रकृति के नियम बनाए गए हैं, उसमें प्रकृति के गुण हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता हैं और शिव जी को उन्होंने तमोगुण का दिया है। खुद भगवान ने अपने पास सतोगुण का सिस्टम रखा है पूरा संभालने के लिए, उसके आधार है। अगर ब्रह्मा जी सतोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर हों तो फिर वो रजोगुण में आकर क्यों दूसरे गलत काम करके कई बार बैठकर बैठते हैं। शिव भी जो हैं, कई बार हमने देखा कथाओं में कि उनके पास भी शक्तियां सब हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, डिस्ट्रक्शन की उनकी सेवा है, तो भी भगवान के मोहिनी रूप को देखकर वो भी भ्रमित हो गए, वो भी कामवासन से आतुर हो गए। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार की शक्ति देकर इस सृष्टि को रचते हैं ताकि ये सृष्टि की जाए। हर जगह भगवान अपने हाथ से नहीं करेंगे आके, भगवान कृष्ण के हाथ केवल बांसुरी बजाने के लिए, और अपने दूसरे अवतारों में भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आते हैं, असुरों का नाश करने के लिए आते हैं जब जब धन की हानि हो जाए। और इसके अलावा रोज क्योंकि जल्दी हर क्षण नहीं आना चाहते, इसलिए इतने सारे देवताओं को बनाया है ताकि वो हर डिपार्टमेंट में सेवा कर सके अपनी और इस संसार को ढंग से चला सके। रूपा जी प्रपट में लिख रहे हैं कि ये जो क्रिएशन है ना, लोग बोलते हैं ब्लास्ट से आई ऐसा आया, भगवान कह रहे हैं, रूपा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, शास्त्र बताते हैं कि इसका सोर्स क्या है। विष्णुस्तु त्रि रूपाणि, विष्णु एक नहीं है तीन है, एक है कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे हैं शिरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। असंख्य, असंख्य का मतलब होता है अनलिमिटेड, गिन नहीं सकते आप। असंख्य ब्रह्मांडों की जिनको गिना ना जा सके, इतने ब्रह्मांड होते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु इन्हीं सभी ब्रह्मांड में, जो कि दूसरा एक्सपेंशन है, अपने पसीने से उस ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं, उस पसीने को पसीने से आधा भर देते हैं और उसमें सर्प के साथ लक्ष्मी के साथ उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और इन्हीं विष्णु के माध्यम से नेवल से एक कमल का फूल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते, पूरी तरह से अज्ञानता में, कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कहां जाना है, अंधेरा क्यों है। तीन बार चक्कर लगाते हो स्टैंड को पकड़कर, उसके कमल के नाल को पकड़कर। अब कमल ऐसा नहीं जैसे हम लोग यहां चढ़ाते हैं, रूप रंग ऐसा ही, लेकिन ये बहुत बड़ा कमल है। उसकी नाल के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम से सारे सब कुछ इसी के अंदर है। और फिर ब्रह्मा जी ऊपर से पकड़ के नीचे आते हैं, देखते कब खत्म का होगा, वहां नीचे जाते रहते हैं, लगता पैर नहीं लग रहे नीचे तो ऊपर चलाते, ऊपर कहते ऊपर कोई होश है, ऊपर देखते हैं आवाजें मारते हैं कोई दिखता नहीं, फिर नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं कि जहां तक गया था तो थोड़ा और नीचे जाता हूं, और नीचे गए, फिर लगा पैर वैर लग नहीं रहे, पता नहीं गलत तो नहीं आ रहा, फिर ऊपर जाते हैं, फिर देखते ऊपर भी कोई नहीं है, कहां जाऊं समझ नहीं आता, कहते चलो एक बार और चक्कर लगाते, फिर तीसरी बार जाते हैं नीचे, और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, कहीं टच नहीं हो रहा, कौन खड़ा नीचे पता नहीं चल रहा, और फिर ऊपर वापस जाते, कहते क्या करूं, फिर एक आवाज सुनाई देती है उनकी, तप तपस्या करो, ब्रह्मा जी तपस्या कर बैठे। फिर भगवान हृदय आदि कवय हृदय में उनके सारा ज्ञान प्रकाशित करते हैं, बोलते हैं भैया आपको सृष्टि करनी है। तो फिर भगवान की प्रेरणा से उनके ज्ञान से सृष्टि करते हैं। सृष्टि करने के बाद तीसरे विष्णु महा जिनका नाम है शिरोदक्षय विष्णु, सभी लिविंग एंटिटी सभी मनुष्यों में पशुओं में सब जगह हर अणु में परमाणु में ये शिरोदक्षय विष्णु हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में चले जाते हैं, इतना विस्तार करते हैं। एक प्रवचन में किसी ने पूछा प्रभु जी जब भगवान जी का एक अवतार हुआ था परशुराम सुना, और उस समय भगवान राम भी थे एक ही टाइम पर, दो दो कैसे? मैंने कहा सबके हृदय में भी परमात्मा है, 30 करोड़ गोपियों के साथ कृष्ण ने रास किया था, 16,108 रानी के साथ एक समय में एक ही जगह थे, 7-7 बुल सांडों के साथ भगवान ने युद्ध किया था। मैंने कहा आपका प्रश्न क्या है? कहता कुछ नहीं। दो अवतार इकट्ठे, वो हर एक के हृदय में बैठे हुए, हर परमाणु हर कण में उपस्थित है। अवतार गिनना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अरे भैया वो किसी भी, वो स्वराट है और क्वालिटीज में अनलिमिटेड है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपको जानने के रूप में भगवान, मैं तो समझ लीजिए माता के गर्भ में हूं, अगर माता के गर्भ में एक बच्चा आपके बारे में कुछ बोलना चाहे तो बता सके? वो कह रहे हैं मेरी भी ऐसी स्थिति है, आपको जानने के बारे में अगर नॉलेज की बात करी जाए तो मैं आपके माता के गर्भ में ही होगी। और ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो सृष्टि के पहले व्यक्ति जो सब कुछ जानते हैं, जिनको हिरण्यकश्यप भगवान बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं माता के गर्भ में होगी। इतना ही नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी भगवान का गुणगान करते हैं, और कई गुणों को शास्त्रों में लिखा, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, ऐसा नहीं कि वही खत्म हो गया, नहीं, अनलिमिटेड क्वालिटीज। भगवान के जो पहले विस्तार हैं बलराम जी, जो अनंत शेष जिन्हें बोलते हैं, बहुत सारे हुड्स हैं जिनके, है ना, सांप के रूप में, बताते हैं कि वो अपने अनंत फनों से, उन हुड से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, हर एक से भगवान के गुणों का व्याख्यान करते हैं, लेकिन कहते हैं आज तक पूरे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो गुण है, वो भी हर क्षण बढ़ते रहते हैं, गुण का व्याख्यान करते हैं लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जानने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो माता के गर्भ में ही, बाहर ही नहीं आया अभी, बाहर आऊंगा देखूंगा उसके बाद कुछ बोलूंगा समझूंगा सीखूंगा, वो तो चीज ही नहीं है ना जी, वो तो कह रहे हैं मतलब कुछ भी नहीं जानता मैं, तो नॉलेज के बेस से। तो शिरोदक्षय विष्णु इस प्रकार अपना विस्तार करके हर एक के हृदय में चले जाते हैं, और जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ये शिरोदक्षय विष्णु से ही भगवान अपना विस्तार कर 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 राम परशुराम वामन वराह इस रूप में अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं। कृष्ण कहां है यहां पर? कृष्ण आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम में, जो कि कमल सदृश कमल का फूल देखा? जी आप कमल का फूल पड़ा होगा कोई ऑफरिंग के लिए होगा, मुरलीकृष्ण कोई भी एक कमल का फूल लाना है अगर है तो आपको गोलोक वृंदावन धाम का जो है दर्शन कराने। गोलोक वृंदावन धाम की ऐसे ही कमल का फूल जो है भगवान के नाभि से निकलता है और जो है इस प्रकार इस पर ब्रह्मा जी अंदर थोड़ा ब्रह्मा जी इसमें ठीक है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं इसमें। आपको ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो आप ऐसा थोड़ी होता है तो ब्रह्मा जी इधर होते हैं और जब नहीं समझ आता तो यहां से उतरते हैं नीचे और चलते रहते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं इस पर बैठ कर तपस्या करते हैं। अगर कोई देखिए जिनको पता नहीं है जिन्होंने कोई सुना नहीं है वो कुछ भी व्यंग कर सकते हैं इस बात में, अरे यार क्या इनका धर्म है ना ब्रह्मा जी पर पैदा हो रहे नीचे जा रहे ऊपर जा रहे कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन ये ज्ञान उसके दिमाग में घुसेगा नहीं, ये तब तक नहीं घुसेगा जब तक वो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा नहीं श्रवण नहीं करेगा भगवान के नाम नहीं लेगा। और ऐसा ही कमल आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति से ऊपर ऐसा कमल सदृश भगवान का धाम है और बताया जाता है ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ मिलता है उसमें पढ़िएगा वो ब्रह्मा जी नहीं बोला वो स्तुति ब्रह्मा जी की आइंस्टीन की नहीं है न्यूटन की नहीं है ब्रह्मा जी की जिन्होंने बल्ब बनाया उनकी नहीं है है ना जिन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया उनका नहीं है ब्रह्मा जी फर्स्ट इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स उन्होंने लिखा है उन्होंने बोला है वो यहां मिलता है उसको पढ़िएगा और उसमें बताया उन्होंने उन्होंने एक छेद से भगवान का धाम देखा था उसमें बताया कि गोलोक वृंदावन धाम जो है वो ऐसा है देखने में कमल के फूल के रूप में और उसमें बताया कि असंख्य वैकुंठ है। क्या है असंख्य का मतलब? जिनको गिन नहीं सकते। दो क्रिएशन है स्पिरिचुअल क्रिएशन और मटेरियल क्रिएशन। तो जो मटेरियल क्रिएशन है भौतिक जगत ये जो भौतिक जगत है इसके ब्रह्मांड भी नहीं गिन सकते आप और अध्यात्मिक को तो भूल ही जाइए। लेकिन जो टोटल क्रिएशन है उसका 75% आध्यात्मिक जगत है और 25% मटेरियल क्रिएशन। तो जो 75 है उसमें जो ब्रह्म ज्योति जो है इधर प्रकाश डाल रही है इधर से कुछ लोग उसी को भगवान मान बैठते हैं ज्योति को निराकार रूप में जितने भी लोग निराकार भक्ति करते हैं या ब्रह्म ज्योति या भगवान को आकार नहीं मानते और भगवान को दिव्य तेज के रूप में जानते हैं वो लोग इस ब्रह्मांड से सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आने वाले तेज को ही भगवान मानते हैं। तो ज्ञान मार्गी इसमें मर्ज होना चाहते हैं या क्या बोलते हैं उसको विलीन होना चाहते हैं तो वो ब्रह्म ज्योति की बात होती है। अब ब्रह्म ज्योति से ऊपर क्या है वैकुंठास जितने भी प्रकार के भगवान के अवतार हैं गिन नहीं सकते उन सब अवतारों के अपने अपने लोग हैं अपने अपने वैकुंठास हैं अपने अपने पार्षदों के साथ जैसे आप बैठे ना ऐसे उनके असंख्य वैकुंठ में असंख्य विष्णु के जो अवतार हैं उसमें उनके असंख्य पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं एक एक पत्ती पे असंख्य वैकुंठ टिके हुए गिन नहीं सकते और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं इसमें। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का भी तो धाम है वो कहां है जो कर्णिका है इस फूल की जो कर्णिका कर्णिका का मतलब द सेंटर पॉइंट सबको दिख रहा है तो ये कर्णिका है यहां ये गोलोक वृंदावन धाम है। क्या है गोलोक वृंदावन धाम और ये जो गोलोक वृंदावन धाम है यहां पर रहते हैं श्री श्री राधा राधिका रमन जी। बोलो श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की। इसलिए जब भी आप कभी देखें भगवान कभी खड़े होते तो कमल सदृश कर्णिका पे ही खड़े होते तो जी क्यों कमल बनाया कुछ और हाथी बना दो कोई ऊंट बना दो ऐसा कुछ बना नहीं बन सकता वो सारा का सारा शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर सब चीजें बनाई जाती है जैसा शास्त्र में वर्णन है वैसा इसलिए कमल का फूल बनाया कोई पत्ता नहीं बनाया हुआ केले के पत्ते पे खड़ा कर दो भगवान को नहीं है ना कि ऐसा कुछ नहीं जो शास्त्रों में वर्णन जिस चीज का है उस चीज पे किया। तो यहां राधा कृष्ण अकेले नहीं अब कितनी ये भी नहीं बता सकते, असंख्य गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, असंख्य गायों के साथ, सुंदर वृंदावन के 12 वनों में, सब यही है 12 वन, गोवर्धन भी इसके अंदर है। तो जब भगवान लीला करने स्वयं उतरते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तो ये पूरा गोलोक वृंदावन धाम ने साथ ही ले आते हैं नीचे, वृंदावन 12 वनों के साथ। और राधा रानी कहती मैं नहीं जाऊंगी अगर ब्रज रज ना हो, यमुना ना हो और गोवर्धन पर्वत ना हो। तो कहते ओके इनको भी ले आते हैं, आप भी चलो। तब आते हैं ये लोग, कहां पर, ये 130 किलोमीटर दूर वृंदावन धाम, ये वही धाम है जो ये है, नॉन डिफरेंट। लेकिन क्योंकि हमारी आंखों पे एक बहुत बड़ा पर्दा है माया का, समझ नहीं पाते। तो यहां गोलोक वृंदावन धाम है, यहां पर नित्य लीला चल रही है भगवान की अपने नित्य पार्षदों के साथ। और इस मटीरियल वर्ल्ड में यहां पर हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, अपने स्वभाव को जानकर कि मैं क्या हूं, दास हूं भगवान का। तो जिस भी रस में, दास्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जिस रस में भगवान के साथ उनका संबंध बनता है, वो वहां पर जाकर भगवान की उसमें सेवा करता है। और यही रस मटीरियल वर्ल्ड में माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, परवर्टी रिफ्लेक्शन, हस्बैंड वाइफ में, प्रेमी प्रेमिका में माधुर्य रस का परवर्टी रिफ्लेक्शन, मित्रों में एक दूसरे को धोखा देने वाला परवर्टी रिफ्लेक्शन है ना, और सेवा करने वाला टॉर्चर रस है ना, टॉर्चर रस। तो यहां पर ये एकदम परवर्टी रिफ्लेक्शन है, उल्टा है ऊपर का। यहां सब सेवा भाव में करते हैं, यहां सब शोषण भाव में करते हैं कि तुम सब मेरे दास हो, मेरे लिए सेवा करो। बस वो दास भी दूसरे को बोलता है, अच्छा मैं तेरा दास हूं, घर में जाकर मैं सबको अपना दास बनाऊंगा, तुम मेरे दास हो, मेरी सेवा करो। बच्चा रोता है, नहीं तुम सब मेरी सेवा करो। हर व्यक्ति अपना दास बनाने के चक्कर मारे, इसलिए इतने सारे दासों के बीच में इनकी दासता ही अलग होती है। तो सारे भगवान बनना चाहते हैं, पर हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, दास कैसे बनेगा। यहां पर एक ही बॉस है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य शब्द का मतलब होता है दास। और यहां पर श्लोक का उल्टा है, क्या कि हम सारे बॉस हैं, हम ही भगवान हैं, एकला ईश्वर अहम, मैं ही सब ईश्वर हूं का। हर व्यक्ति का अपना अपना स्टेटमेंट, बाकी सब मेरे दास, बोलता है कि होता नहीं। ये नगरी बॉसों की नगरी है, बॉसेस की नगरी, वो दासों की नगरी है। इस बॉसेस में कितने सारे बॉस हैं जो किसी की सुनना नहीं चाहते, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी को नीचे करना चाहते हैं, ऊपर खींचना, सीट खींचना चाहते हैं चिप। और आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, उधर केवल एक दूसरे की सेवा करना, दास दासानुदास, ये भाव। तो इस संसार में हम लोगों को इन सर्विस सेंटर से, इस्कॉन टेम्पल से, प्रचार के माध्यम से कंडीशन सोल्स को उनकी जो खोई हुई चेतना है, उनका जो भूला हुआ लक्ष्य है, वो याद दिलाकर ये समझा रहे हैं, भैया तुम बॉस नहीं हो, क्या हो, दास हो। किसके? भगवान कृष्ण के। और जब तक यहां पर बॉस बनने का प्रयास करोगे तो दुखी परेशान रहोगे हिरण्यकश्यपु की तरह, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यपु तो हैं, छोटे छोटे क्वालिटीज तो बराबर मिला ली हमने, तो तब तक दुखी होंगे, परेशान होंगे। हिरण्यकश्यपु को तो मारने के लिए स्वयं भगवान आए थे, हमें मारने के लिए आतंकवादी आ जाएंगे या हम एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे। लेकिन भगवान को क्या पता था, कल पता तो था भगवान को कि हर जगह सारे हिरण्यकश्यपु होंगे छोटे छोटे, तो कितने अवतार लेने पड़ते भगवान को। इसलिए भगवान ने क्या किया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने नामों के रूप में अवतार ले लिया। और जो हमारे हृदय में असुर रूपी हिरण्यकश्यपु बैठा है, जो इस प्रकार की भावना जागृत करता है यहां पर भोग की, इसको मारने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने अपना हरि नाम दे दिया और कहा चैतन्य महाप्रभु ने क्या, निज सर्वशक्ति, अपनी पूरी शक्ति इन्वेस्ट कर दी अपने नामों में। अब जो व्यक्ति भी भगवान का नाम लेगा, जो भी दर्शन करेगा, जो भी प्रसाद खाएगा, जो भी कथा सुनेगा, तो जब इस प्रकार इन सब चीजों से कृष्ण उनके अंदर प्रवेश करेंगे, कहीं हम कल लेक्चर में बता रहे थे कि कृष्ण जो है हमारी गंदगी को साफ करने वाले वो साबुन है या वो सर्फ है जो एक बार में सब थोड़ा लेंगे। ज्यादा गंदगी है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप कपड़े को जैसे मर्जी साबुन पे डालिए सर्फ में डालिए, उसका काम क्या है, साफ करना। उसी तरह कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की कथा, भक्तों का संग, ये सब हमें प्यूरिफाई करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं जो भी भगवान का नाम लेना शुरू करता है धीरे धीरे उसके सारे अवगुण चले जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का, क्योंकि कलयुग का हमने बताया कलयुग केवल नाम आधार, नाम ही सब कुछ है, इसलिए हर धर्म में भगवान के नामों की ही बात की जाती है, भगवान के नामों को उच्चारण किया जाता है ताकि बार बार उच्चारित करने से उनका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाए। तो जब इस प्रकार के सर्विस सेंटर्स में लोगों को समझाया जाता है, उनकी सर्विस की जाती है, धुलाई की जाती है, उनको समझाया जाता है, ये जो बॉस बन गए हो डंडे मार मार के, ठा डंडे तो नहीं मारते, खैर लेक्चर में श्लोक बोल बोलकर या सिद्धांत समझा समझा कर उनको समझाते हैं, भैया ये बॉस वाली मेंटालिटी खत्म करो, कौन सी लाओ, हाँ अगर तो यहां रहना है तो बॉस बने रहो और अगर यहां आना है तो दास। कमी नहीं है, जैसे यहां तो फिर भी बोलते ना नो वैकेंसी, वहां पर अनलिमिटेड वैकेंसीज खाली पड़ी, लेकिन योग्यता क्या है कि कौन से कॉलेज से निकला हो, ये इस्कॉन कॉलेज से निकला है ना, 600 यूनिवर्सिटीज खोली हैं हम लोगों ने, इन जगहों से हम लोग लोगों को समझा रहे हैं, भैया मिस्टर बॉस बिकम मिस्टर दास, और बॉस से लेकर दास तक आने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, कुछ झटके भी लगते हैं, दर्द भी होता है, ईगो को क्रश करना पड़ता है, बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और काफी रगड़ मस्ती है ना, तब जाके धीरे 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 व्यक्ति शुद्ध होता है, फिर उसको लगता नहीं भैया दास बनने में ज्यादा बेनिफिट है। और जब यहां पर गुरुजन देखते हैं कि ओके ये मिस्टर ये थे, अभी दास नाम लगाए पीछे खाली और प्रयास कर रहे हैं दास से अब असली दास बनने का, ओके इनके अंदर क्वालिटी है दास बनने की, इज फुली सरेंडर्ड टू अथॉरिटी एंड टू गुरु, तो अब इसको कहां लेना चाहिए, भाई दास की क्वालिफिकेशन ले लिया दीक्षा में नहीं खाली उसके आगे भी, मतलब पूरी तरह मन से हृदय से वाणी से अब आप दास हो, तो बॉस से भरे हुए इस जगत में कोई यूज है आपका, हाँ तो गुरु कहेंगे भैया ये तो तैयार हो गया, तो कहां भेजेंगे, गोलोक वृंदावन में, ठीक है, नहीं तो वहां पर चाहिए दास, इधर चाहिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप याद रखिए हमेशा जब जब कमल दिखे, हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, जब जब इस्कॉन दिखे तो सर्विस सेंटर, मार्केट के सर्विस सेंटर दिखे तो लगे याद आना चाहिए अपनी सर्विस करानी है, जब जब मोबाइल का चार्जर दिखे तो लगना चाहिए मंदिर आना है चार्जिंग करने के लिए, तो ये सब चीजें बनी है इसलिए ताकि हम लोगों को रिमाइंड कराया जा सके। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का, ये प्रभु जी भगवान को ऑफर करो, उनको बोलो भगवान ब्रह्मा जो है वो एनर्जी है या एक व्यक्ति है, भगवान सॉरी ब्रह्मा जी जो है एक व्यक्ति है और बिना एनर्जी के कोई व्यक्ति एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये तीन शक्तियों में पूरा संसार है, आध्यात्मिक जगत भी और भौतिक जगत भी, तो वास्तव में सारी शक्तियां हैं, हम सब तटस्थ शक्ति है और ब्रह्मा जी भी एक तटस्थ शक्ति है, और भगवान के द्वारा प्राप्त कुछ विशेष गुण एम्पावरमेंट के बेसिस पर उनको एक पोस्ट दिया गया जहां पर वो सेवा कर रहे हैं, एज अ पर्सन विद स्पिरिचुअल एनर्जी तटस्थ। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर विमानंद।